आज है 20 नवंबर दिन रविवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार करके आए भारतीय सेना के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों ने दी हड़ताल में दो दिन की राहत, लेकिन क्या सामान्य हो पाए हैं हालात?
पूरा दिन रिलैक्सेशन था, हमें गाड़ियां चल रही थी कभी कभार, लेकिन ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट तो बंद ही था। थोड़े से हालात सुधर ही रहे, ज्यादा स्टोन पेल्टिंग भी नहीं होती। हम पूरा भी नहीं कह सकते कि लाइफ नॉर्मल हुई है।
नोटबंदी के बाद वित्त राज्य मंत्री ने किया हालात सामान्य होने का दावा।
नेचुरली फर्क तो पड़ा है, लाइन में कम हुई है और दो तीन दिन से हम देख रहे हैं लाइन में भी कमी आई है और फर्क पड़ा है। रोड डेली समीक्षा कर रहे हैं, सुबह शाम समीक्षा कर रहे हैं।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा और खेल की भी खबरें, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तर प्रदेश के कानपुर के नजदीक पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल रही है। ट्रेन की चार बोगी पटरी से उतर गई हैं। ट्रेन पटना से इंदौर जा रही थी। नोटबंदी के मुद्दे पर दक्षिणी गुजरात के सूरत शहर में हजारों किसानों ने ट्रक और ट्रैक्टरों के साथ विशाल रैली निकाली। किसानों ने दूध से भरे कैन और गेहूं की बोरियां कलेक्टर ऑफिस के बाहर फेंक कर केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने शहर की तरह गांव और तहसील की सरकारी बैंकों को 500 और 1000 के नोट बदलने की मंजूरी नहीं दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घोर विरोधी मिट रोमनी से मुलाकात की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विदेश मंत्री के पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली, जिसके बाद मिट रोमनी ने इसे दूरगामी और स्पष्ट बताया और कहा कि उन्हें नए प्रशासन का इंतजार है। चुनाव अभियान के दौरान रोमनी ने ट्रंप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रोमनी से मुलाकात के बाद पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, क्या आज कोई घोषणा होने वाली है, कोई बड़ी घोषणा? ट्रंप ने जवाब दिया, देखते हैं, ऐसा हो सकता है। ये थे मिट रोमनी से मुलाकात के बाद पत्रकारों को उत्तर देते डोनाल्ड ट्रंप। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में हैमिल्टन के कलाकारों से नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस से माफी मांगने के लिए कहा है। शुक्रवार को माइक पेंस ने हैमिल्टन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें कलाकार ब्रेंडन विक्टर डिक्सन ने उनके सामने मंच पर एक चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, जनाब, हम विविध अमरीका का हिस्सा हैं, जिन्हें चिंता है कि आपका नया प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माइक पेंस को हैमिल्टन के कलाकारों ने प्रताड़ित किया है, वो इसके लिए माफी मांगे। पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के गोलीबारी कर तीन बच्चों को मारने का आरोप लगाया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक महिला घायल हुई थी, और बाद में हुई ऐसी ही एक अन्य घटना में एक जवान घायल हो गया था। पाकिस्तानी सेना ने इधर दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे एक भारतीय ड्रोन को मार दिया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पियना नियटो ने कहा है कि अमेरिका के साथ नया एजेंडा बनाने के लिए उनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को प्राथमिकता देगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जो अभी अभी आ रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नज़दीक पटना इंदौर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सीधे चलते हैं लखनऊ बीबीसी संवाददाता समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, क्या जानकारी है?
जी शीला जी, ये करीब सुबह 3 बजे की घटना है। इंदौर से पटना जा रही थी ये ट्रेन, इंदौर पटना एक्सप्रेस, और रेल की इसके चार कई डिब्बे जो है, सब अभी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन कई डिब्बों के पटरी से उतरने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इसको अब कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। कई एजेंसियों में अभी मेरी अब बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिलीफ टीम, राहत कर्मी हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। कानपुर देहात के पास पुखराया एक जगह है और वहीं पे ये दुर्घटना हुई है सुबह 3 बजे के आसपास।
जी समीर, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। ये थे लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र। वहाँ जो है पटना इंदौर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। रुक करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारतीय सेना के एक ड्रोन विमान को उसने मार गिराया है। साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर बिना उकसावे के नियंत्रण रेखा के पार फायरिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि इस फायरिंग में 3 बच्चों की मौत हो गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी आसिफ फारूकी से बात की।
सेना की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एक क्वाडकॉप्टर जो है उसको मार गिराया है पाकिस्तानी सेना ने। ये क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर में उसके ऊपर फ्लाई कर रहा था और पाकिस्तानी सेना का ये भी कहना है कि ये 60 मीटर पाकिस्तानी बाउंड्री के अंदर आ गया था और इसको नीचे गिराया गया है और इसका जो मलबा है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है और उनको उन्होंने अपने तहवील में रखा हुआ है, उसका मुआयना किया जा रहा है।
आसिफ ये बताएं कि पाकिस्तान की फौज ने जो दावा किया है, क्या फौज के अलावा किसी दूसरे जरिए से इस दावे की, इस खबर की पुष्टि हुई है?
ये बहुत दूर दराज इलाका है और बॉर्डर एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी भी नहीं है और वहाँ पे अभी तक ऐसे कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इसको कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, जो मलबा है, जो इसकी बकाया जाता है वो भी पाकिस्तान आर्मी के पास है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से या पुलिस से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है।
आसिफ, ये बताइए कि क्या ये अपनी तरह का पहला मामला है या इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं?
ऐसा हो चुका है एक बार पहले भी, अगर मुझे ठीक से याद हो कि इसी तरह का एक क्वाडकॉप्टर जो है वो पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल भी गिराया था और उसके बारे में ये कहा गया था कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं, मिलिट्री पोजीशंस हैं, उनकी तस्वीरें ले रहा था। क्योंकि आपको मालूम है ये जो क्वाडकॉप्टर रहते हैं जिनको लोग अब ड्रोन का नाम भी देते हैं, इनमें कैमरास लगे हुए होते हैं छोटे छोटे जो कि तस्वीरें खींचते हैं और बाद सूरतों में लाइव वीडियो ट्रांसमिशन भी करते हैं। तो पाकिस्तानी सेना का ये कहना है कि इस तरह की सिचुएशन में जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बहुत है तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी दुश्मन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उनकी पोस्ट कहाँ पे हैं, उसमें कितने लोग हैं, उनको सप्लाई कहाँ से आ रही है, किस तरह की एक्टिविटीज होती है, तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो जाहिर है फौज जब वो आमने सामने होती है और तनाव उनमें होता है तो वो एक दूसरे के बारे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के 7 सेना के लोग जो हैं वो हलाक हुए थे इंडियन शेलिंग से, तो वो इसलिए हुए थे कि वो एग्जैक्टली जो एक गोला था इंडियन फौज का वो पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर आके गिरा था। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इंडियन आर्मी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि ये पोस्ट एग्जैक्टली किस जगह पर वाकई है और उसके कोऑर्डिनेट्स उनके पास हों। सेंसिटिव मामला है, पाकिस्तान आर्मी इस पर ज्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन माजी के तजुर्बे को देखकर हम कह सकते हैं कि किस तरह की जो चीजें हैं वो जासूसी के लिए या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होती है।
आसिफ साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं जो कहती हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके कुछ सैनिक और कुछ आम लोग मारे गए हैं भारत की तरफ से गोलाबारी में।
जी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें ये कहा गया था कि जो गोलाबारी इंडियन साइड से पाकिस्तान की तरफ हुई है उसमें कुछ सिविलियन मारे गए हैं जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं और छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 1 साल से लेकर 7 साल तक बताई जाती है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं और जो पुलिस है उन्होंने भी कंफर्म की है।
पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बिना उकसावे के फायरिंग का आरोप, तो भारत ने कहा पहले पाकिस्तान ने की फायरिंग। ये थे आसिफ फारूकी, उनसे बात कर रहे थे संदीप सोनी। भारत प्रशासित कश्मीर घाटी में पृथकतावादियों ने हड़ताल में कल और आज के दिन के लिए 2 दिन की राहत दी है। ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से वहाँ जनजीवन सामान्य हुआ है। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने ही श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा में कुछ लोगों से संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या लोगों को वाकई लग रहा है कि जनजीवन सामान्य हो रहा है या या घाटी की तस्वीर अभी भी कुछ स्याह है।
133 डेज के बाद रिलैक्सेशन मिली है। कैलेंडर जो निकला पूरा दिन रिलैक्सेशन था हमें। गाड़ियां चल रही थी कभी कभार, लेकिन ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट तो बंद ही था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो बंद ही था फिलहाल। लेकिन थोड़े से हालात सुधर ही रहे, ज्यादा स्टोन पेल्टिंग भी नहीं होती, लेकिन ओवरऑल मतलब हम पूरा भी नहीं कह सकते कि लाइफ नॉर्मल हुई है। 10th 12th का एग्जाम जैसे वो तो हो रहे हैं, लेकिन बाकी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुले हैं अभी।
जी हालात सुधरे नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला आज। पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वो 7th स्टैंडर्ड में है, मैं उसको स्कूल भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मतलब 5 साल के बच्चे को भी इन्होंने पैलेट्स मारे। तो हम प्रेफर कर रहे थे कि अगर 1 साल जाया भी होगा, लेकिन मतलब बच्चा तो जिंदा रहेगा ना। हम तैयार नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने में, मतलब अभी भी आज चलो पूरा दिन खुला था आज, मतलब स्कूल भेज सकते थे बच्चों को, पर नहीं, हमने सोचा कि हमें नहीं पता है कि कब क्या होगा। सब बोल रहे हैं कि हालात ठीक हो गए, अभी मीडिया पे आप देखोगे वहाँ दिखाएंगे कि ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बाहर जा रहे हैं क्योंकि घर की चीजें हमें लेनी है, मतलब 4 महीने से बंद है तो कहाँ मिलेंगी वो चीजें। लेकिन मतलब क्या सच में हालात सही हो गए?
सब कुछ जो है भाई फोर्स करा दिया गया है, भाई फोर्स जो है नॉर्मल पे ला दिया गया। अभी नॉर्मल भी नहीं है, उस पे भी धमकियां मिलने लगी कि अगर आप बाजार नहीं खोलोगे तो ये हो जाएगा। सारे जो है ट्रांसपोर्ट के मालिकीन जो है और ये जो छोटे छोटे जो मतलब ओनर्स हैं गाड़ियों के, इनको बुला लिया गया है। जो मतलब पैसेंजर गाड़ियां, इनको बुला लिया गया है कि आप भाई गाड़ियां क्यों नहीं निकालते। उन्होंने बोला हम नहीं निकाल सकते, नुकसान हो जाता है, अगर आप नहीं निकलोगे तो परमिट कैंसिल, ये बोला गया। तो बहुत कुछ मतलब यहाँ जो है मतलब भाई फोर्स उन्होंने करा दी।
कश्मीर में सामान्य हालात होने का लोग कर रहे हैं इंतजार। स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे संदीप सोनी।
हम हैं बेखौफ, हम हैं दमदार,
हम हैं क्रिएटिव,
हम हैं असरदार,
हम दिखाते नए रास्ते,
सुनाते कहानियाँ,
हम हैं 100 विमेन।
खास कार्यक्रम और बहस के जरिए सुनाएंगे हम दुनिया भर की औरतों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ।
BBC स्पेशल 100 विमेन।
21 नवंबर सोमवार से हम लाएंगे विशेष साक्षात्कार, रिपोर्ट और बहुत कुछ ऐसा जो आपने इससे पहले देखा सुना नहीं होगा।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। 1500 के पुराने नोट बंद होने और नए नोट जारी होने के कई दिन बाद भी भारत के अधिकतर हिस्सों में पुराने नोट बदलने और एटीएम से पैसा निकालने के लिए लोगों को अभी भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि भारत सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि सरकार के इस फैसले को इससे बेहतर तरीके से लागू नहीं किया जा सकता था। उनका कहना था कि जब ये फैसला लागू हुआ तो शुरुआत में लोगों को दिक्कत आई, लेकिन अभी तक देश में किसी एक बड़ी घटना का मामला सामने नहीं आया है। इधर बीबीसी से बातचीत में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि लोगों की दिक्कतें पहले से कम हुई हैं और इसके नतीजे जनता के हित में ही होंगे। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की।
असर आपको भी दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं, और नेचुरली फर्क तो पड़ा है। लाइन में कम हुई है और 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लाइन में भी कमी आई है और फर्क पड़ा है। रोड डेली समीक्षा कर रहे हैं, सुबह शाम समीक्षा कर रहे हैं। कोई आपका कोई सुझाव हो बताइए, आप काम करना चाहेंगे।
मेघवाल जी, आपसे बात करने से कुछ देर पहले मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास कई एटीएम्स पर गया। मैंने देखा कि वहां पर जिन एटीएम्स में कैश है वहां पर लंबी लंबी कतार लगी है और वो एटीएम खाली पड़े हैं जिसमें नगद नहीं है, यानी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं।
कनॉट प्लेस में तो कल रात को ही हम निकाल के लाए हैं।
चलिए, ये तो दिल्ली की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जो छोटे गांव देहात कस्बे हैं वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहां क्या दिक्कतें हो रही होंगी? और आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो 1500 के नोट बंद करने का ये फैसला अचानक उठाया, इसको अमल में लाने के लिए तैयारी और अच्छे तरह से करते तो दिक्कतें कम आती, बेहतर तरीके से ये प्रबंधन
की ऐसी तैयारी होती है जी? और आपके इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आप देखना।
मेघवाल साहब, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, फिलहाल क्या आप ये बता सकते हैं कि जो 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने के लिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें कब तक कम हो पाएंगी, कब तक दिक्कतें जारी रहेंगी, आने वाले कितने दिनों में उम्मीद करें कि दिक्कतें कम
नहीं गिने जाते हैं? लेकिन लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं तो खुद गया हूँ कल दिल्ली में, यहाँ जो हमारे MPs उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं है, तो मैं MPs का जो ये क्वार्टर है जहाँ ATM है, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू, दोनों जगह जाके आया हूँ कल, और दोनों जगह पैसे निकले हैं। पहले मुझे किसी ने कहा कि MPOs के नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो रात को मैं ही जा जाता हूँ। आपने आज बताया कनॉट प्लेस के आसपास, रात को घूमूंगा मैं।
मेघवाल साहब, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, पूरा भारत नहीं है दिल्ली,
ये आम लोगों आम आदमियों के लिए ही है। आज जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप गांधीनगर दिल्ली जाइए, आपने एक पैंट ली, वो आपको बिल नहीं देता है। अगर पैंट खराब निकलती तो आप कहाँ जाओगे? इसके लॉन्ग टर्म देख के तो सही, अब बाद में वो बिल देगा, देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि पेमेंट उसको चेक से उससे ही करना पड़ेगा आगे चल करके। उपभोक्ताओं की दृष्टि से आप 2-3 साल के बाद का भी देखिए।
लेकिन फिलहाल कुछ और उपाय करने जा रही है सरकार?
कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जैसे जैसे सुझाव आते जा रहे हैं उसको लागू कर रहे हैं। आरबीआई को भी समीक्षा में के लिए कहा गया है।
सरकार कह रही है, दावा की लोगों की परेशानी हुई है कम, लेकिन बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली जब बीती रात करीब 11 बजे दफ्तर से निकलकर एटीएम पहुंचे तो उन्हें कई लोग शिकायत करते हुए मिले।
इस वक्त रात के 11 बजे हैं तकरीबन, और इस वक्त भी नॉट प्लेस के केजी मार्ग पे एक बैंक के सामने कम से कम 10-12 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। चलिए देखते हैं, उनसे बात करके पूछते हैं कि हाँ उनका तजुर्बा क्या है। देर से आए हैं या मतलब यूजुअली आप देर से ही आते हैं?
देर से ही आए ताकि लाइन कम मिले।
ये पहला अटेम्प्ट है आपका एटीएम पे या इसके पहले भी आप अटेम्प्ट ले चुके हैं?
पहले भी आ चुके हैं।
इसी एटीएम पे। आपका नाम?
मेरा नाम वसीम अहमद है।
वसीम साहब, ये आप यहीं कहीं पर आसपास में काम करते हैं?
नहीं, मैं रहता हूँ अपना तुर्कमान गेट
से यहाँ आए हैं कनॉट प्लेस।
जी जी।
क्यों वहाँ का एटीएम?
वहाँ भी क्या है कि एटीएम में पैसा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ निकालने आ रहे हैं।
कितनी बार आ चुके
हैं? आज 4th time आया हूँ निकालने। वहाँ तो एटीएम में पैसा ही नहीं है, बैंकों में इतनी लाइनें लंबी, तो रात को इसलिए आते हैं क्योंकि टाइम बचे, दिन में काम करते हैं तो उस टाइम तो टाइम मिलता नहीं दिन में, रात को फ्री होते हैं तो आ जाते हैं।
दिल्ली में हैं लोग परेशान, तो इधर गुजरात के सूरत में किसानों ने अमूल मिल्क में दूध आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। किसान इस बात से परेशान हैं कि वो सहकारी बैंकों में लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी कमर टूट रही है। सहकारी बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों, किसानों की दशा, दूध आपूर्ति के दूसरे तमाम पहलुओं के साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अंकुर जैन ने ये रिपोर्ट भेजी है।
दक्षिण गुजरात के सूरत शहर में हजारों किसानों ने नोटबंदी के मसले पर ट्रक और ट्रैक्टरों के साथ एक विशाल रैली निकाली। दूध से भरे कैन और गेहूं की बोरियां कलेक्टर ऑफिस के बाहर फेंक केंद्र सरकार और आरबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर एक अल्टीमेटम भी दे डाला। दरअसल नोटबंदी के फैसले से किसान खफा है, क्योंकि शहरों की तरह गांव और तहसील की सहकारी बैंकों को 500 और 1000 की नोट बदलने की मंजूरी नहीं मिली है। किसानों ने अब कहा है कि 7 दिनों में अगर यह निर्देश वापस नहीं लिया गया तो वह गुजरात में अमूल दूध देना बंद कर देंगे। अमूल गुजरात समेत कई राज्यों में दूध की बिक्री करता है। इस बारे में दक्षिण गुजरात किसान संगठन के जयेश देलत कहते हैं कि इस मुद्दे पर किसानों में बहुत गुस्सा है, और अगर सरकार नहीं मानी तो दिल्ली और मुंबई समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में अमूल का दूध नहीं मिलेगा।
सरकार को आज हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि गुजरात से दिल्ली और बॉम्बे में हर रोज हमें भी जो किसान की सहकारी मंडी है अमूल, उसके माध्यम से हम दूध बेच रहे हैं दिल्ली और बम्बई में 50 लाख दूध। आने वाले 10 दिनों में अगर हमारी जो बात है आरबीआई ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पे जो बैन लगाया है वो नहीं उठाएंगे तो हम दूध की जो सप्लाई है वो रोकने वाले हैं।
आरबीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर 8 के नोटबंदी के आदेश के बाद एक निर्देश जारी कर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों से 500 और 1000 रुपए की नोट को बदलने पर रोक लगाई थी। इस मुद्दे को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े लोगों ने सरकार के समक्ष इस आदेश को वापस लेने की मांग रखी है। दक्षिण गुजरात किसान संगठन के अध्यक्ष जयेश पटेल कहते हैं कि इस रोक की वजह से गांव में मानो जिंदगी थम सी गई है।
किसान है उन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। खरीफ की जो उनकी क्रॉप है जो बाजार में बिकने के लिए आई है उसके कोई खरीदार नहीं है, इसकी वजह से या तो वो उधार बेच है या उसको ऐसे ही मार्केट यार्ड में या एपीएमसी में रख के जा रहे हैं। उससे बड़ी प्रॉब्लम जो 3 दिन पहले रिजर्व बैंक ने एक फैसला 14 तारीख को दिया है उसकी वजह से किसानों को न वहां पैसा जमा कर पा रहे हैं या न तो वहां से मिल रहा।
हालांकि कईयों का मानना है कि ये निर्देश गड़बड़ी को रोकने के लिए लिया गया है, पर पटेल मानते हैं कि यह सरकार की एक चाल है।
जो दूर दराज के गाँव है 10-15 किलोमीटर तक न तो कोई नेशनलाइज बैंक है न उन गांवों में पोस्ट ऑफिस है, लेकिन कुछ गांव में कोऑपरेटिव जो कि वो किसानों की आमदनी रखने का और वहां से निकालने का एक साधन बन चुका है, तो हमें लग रहा है कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट बैंकों को जो बेनिफिट देना चाहती है सरकार FDI के नाम पे या ऐसे, हमें ये पूरा पक्का यकीन है कि यही एक तरीका हो सकता है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक को बैन करने का कोई 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 मुझे तो टूट दिख नहीं रहा है।
हर साल बारिश की आस लगाए बैठे किसान अब अपनी पुरानी 500 और 1000 की नोट हाथ में लेकर सरकार के नए अध्यादेश की राह देख रहे हैं। सरकार से खफा दक्षिण गुजरात के गन्ना किसान रमेश पटेल कहते हैं कि गांव में अफरा तफरी का माहौल है।
गांव में तो अभी सब लोग इतना परेशानी है, हर कोई के पास पैसा नहीं है, हर कोई पर कोई खर्च नहीं कर रहा, पैसे नहीं है और सब गांव में सबके पास मंदिर में पैसा है, सरूट के पास पैसा नहीं है और सबके पास भीख मांग रहा है, 100-200 रूपए किसी के पास ले रहा है।
पर इस मुद्दे पर क्या सरकार अपना रुख बदलेगी? गुजरात में सहकारी बैंकों के साथ लंबे समय से जुड़े ज्योतिन्द्र मेहता कहते हैं कि RBI को ये निर्देश आज नहीं तो कल वापस लेना ही होगा।
हमने आज गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज ने, गुजरात फेडरेशन ने, सरकार भारती ने, सबने रिक्वेस्ट की है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों का समावेश किया जाए। हमने सबने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, रिजर्व बैंक के सामने, इसलिए कुछ न कुछ दे आर थिंकिंग ऑन दिस लाइन और उनका समावेश हो जाएगा ऐसा दिखता है।
इस मामले में गुजरात में राजनीति भी गरमाई हुई है। गुजरात में अधिकतर सहकारी संगठनों के अध्यक्ष भाजपा से जुड़े हुए हैं और वह इस मुद्दे पर सरकार से सहमत नहीं है। गुजरात में भाजपा के कई विधायकों ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है।
गुजरात में सरकार से नाराज हैं किसान। ये थे अहमदाबाद से अंकुर जैन। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में नियुक्तियों के लिए 77 नाम केंद्र सरकार के पास भेजे थे। केंद्र सरकार ने इनमें से 43 नामों को मानने से मना कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर गेंद वापस केंद्र के पाले में डाल दी है कि वो उन नामों पर पुनर्विचार करे जिसे उसने मंजूरी नहीं दी है। क्या इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती तनातनी के रूप में देखा जाना चाहिए? क्या न्यायपालिका में राजनीति का दखल बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने भारत के पूर्व विधि मंत्री शांति भूषण से बात की।
जो लॉ ले डाउन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह है, एक दफा सरकार वापस कर सकती है रिकंसिडरेशन के लिए कोलिजियम को, और जो भी वो कारण बताएं उन पे विचार करके या तो कोलिजियम कुछ नामों को ड्रॉप करेगी या रिट्रेट करेगी। अगर यूनानिमसली रिट्रेट करती है तो फिर सरकार बाध्य है उनको अपॉइंट करने के लिए। तो तनातनी किस बात से? या तो वो वजह बताएं कि जो सिफारिशें उन्होंने भेजी हैं उसमें उनको क्या चीज गलत लग रही है, क्या बात है उनके खिलाफ। अगर कोई खास चीज है उनके खिलाफ तो फिर उसको लिख के भेजें, तब फिर वो उनको नहीं अपॉइंट करेंगे। अगर ऐसे ही कहते हैं कि हमें ये नाम पसंद नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। सरकार को क्या पता है कि कौन वकील कैसा है क्या नहीं है? उनको सरकार के पास तो कोई जानकारी होती नहीं है। रोज बहस करते हैं कोर्ट्स में वकील लोग, तो जजेस को पता रहता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे कंसेशन चलते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी के खास आदमी हैं, उनका खास आदमी है, इस वजह से वो रिकमेंड कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल कंसेशन से। पहले नहीं होता था ये सब, लेकिन अब इधर होने लगा। भाई 2.5 साल जनता सरकार थी, हम लॉ मिनिस्टर थे, एक केस में भी हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय थी उसको डिसरिगार्ड नहीं किया, जो उन्होंने कहा उसको अपॉइंट किया हमने।
तो शांति भूषण जी, क्या इसे इस तरह से देखा जाए, माना जाए, समझा जाए कि न्यायपालिका में राजनीति का दखल बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है?
अगर सरकार न्यायपालिका को कमजोर करना चाहती है तो ये बड़ी गलत बात है। ये दूसरी बात है कि कोई नया तरीका निकाला जाए अच्छे अच्छे लोगों को छांटने का, जो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन होल्ड टाइम, लेकिन वो होल्ड टाइम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर ही रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो सकता वो होल्ड टाइम ऑर्गेनाइजेशन।
भारत में तमाम अदालतों में पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, ऐसे में जजों की नियुक्तियां समय पे नहीं होंगी तो आपको नहीं लगता कि कोर्ट कचहरी में लाइन लगाने वालों की और संख्या बढ़ जाएगी?
जजेस की संख्या और बढ़ने की जरूरत है, ज्यादा अच्छे जजेस को छांटने की जरूरत है, और ये थोड़ी कि अपॉइंट न करें तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी?
भारतीय न्यायपालिका में एक बड़ा सुधार जो आपके हिसाब से इस वक्त होना चाहिए?
सुधार तो बहुत सारे होने चाहिए। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो अपॉइंटमेंट के पहले से और अपॉइंटमेंट के बाद तक उनके ऊपर पैनी नजर रख सके कि ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा सुधार है कि जिससे करप्शन, पैसा लेके कानून व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सुधार होगा। दूसरा ये कि सीनियोरिटी और एज की परवाह करे बगैर कोई निष्पक्ष ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जो अच्छे अच्छे लोगों को छांट के और जज नियुक्त करवाए। तीसरी चीज ये है कि जो प्रोसीजरल लॉज है उसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये CPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ये सब बिना बात के लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड, इसी के डिस्कशन में महीनों लग जाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल लॉज होने चाहिए।
पूर्व विधि मंत्री शांति भूषण से बात कर रहे थे संदीप सोनी। और अब सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां कानपुर के नज़दीक पटना इंदौर एक्सप्रेस पटरी से उतर जाने की खबर आई है। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताइए कि क्या जानकारी मिल पाई है अब तक आपको?
जी सुशीला, अभी मेरी बात हुई ADRM जो है झांसी डिवीजन के और मिस्टर विनीत सिंह, वो वहीं पे मौजूद थे घटनास्थल पर ही। उन्होंने हालांकि बहुत जानकारी नहीं दी, उनका कहना था कि हमारी प्राथमिकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य है, हम उसको पहले निपटाएं। और लेकिन उन्होंने बताया कि 14 डिब्बे जो है इस इंदौर पटना एक्सप्रेस के ये पटरी से उतरे हुए हैं और मृतकों की संख्या चूंकि जो आ रहा है अभी एजेंसियों में आ रहा है वो तो 10 से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से इन्होंने मृतकों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं की। ये इन्होंने कहा कि बड़ा हादसा है, आप अभी धैर्य रखिए, चूंकि बहुत सारे लोग और बहुत से लोग उसमें, बहुत से यात्री फंसे हुए हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी कानपुर देहात के हैं, कानपुर नगर के हैं, उनको भी बुलाया गया है, राहत टीमें बुलाई गई हैं, रेलवे की जो जरूरी होती है, इसके अलावा आपको उनका कहना था कि आसपास के लोग भी उसमें काफी मदद कर रहे हैं। तो जानकारी अभी इसमें यही है, लेकिन 14 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद जो दुर्घटना हो सकती है आप उसकी गंभीरता समझ सकती हैं। इसके अलावा जो उस रूट की जो और ट्रेनें हैं उनको फिलहाल अभी वहां पे आवाजाही उनकी रोक दी गई है उस तरफ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। थे लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का, मानसी दास।
समाचार पत्रों में नोटबंदी और इससे जुड़ी परेशानियां आज के अखबारों की सुर्खियों में हैं। आपको बता दूं कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर को की गई थी। जो आप समझ ना सकें उसकी आलोचना ना करें, अपने आलोचकों के लिए यह कहना है भारत के प्रधानमंत्री मोदी का। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डिलन के गाने द टाइम्स दे आर अ चेंजिंग का जिक्र करते हुए आलोचकों से कहा कि जो आप ना समझ सकें आप उसकी आलोचना ना करें। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को महान बनने के लिए शॉर्टकट अपनाने वाला नेता कहा था। इसी अखबार में छपी एक और खबर के अनुसार 133 दिनों के बाद कश्मीर घाटी में जनजीवन सामान्य हो रहा है। अखबार ने श्रीनगर के बाजार की एक तस्वीर छापी है और लिखा है कि हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में पहली बार बाजार खुले हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक खबर छापी है जिसके अनुसार नोटबंदी की मार पड़ रही है छोटे व्यापारियों पर और ऐसे गाँव पर जहाँ बैंक नहीं है। छोटे व्यापारियों को अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए जरूरी रुपये 100 के नोटों में जुटाना मुश्किल पड़ रहा है। नोटबंदी पर RBI भी रहा अंधेरे में, ये खबर है जनसत्ता के पहले पन्ने पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 और 100 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया गया था।
जी समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानसी दास। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश के कानपुर के नज़दीक पटना इंदौर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर दक्षिण गुजरात के सूरत शहर में हजारों किसानों ने ट्रक और ट्रैक्टरों के साथ विशाल रैली निकाली। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घोर विरोधी मिट रोमनी से मुलाकात की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विदेश मंत्री के पद के लिए मिट रोमनी के नाम पर विचार किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक थिएटर में हैमिल्टन के कलाकारों पर नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस से माफी मांगने के लिए कहा है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।